हरे कृष्णा।
धन्यवाद। तो आज श्रीमद् भागवतम कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे गोस्वामी इसमें से ही आप बोल सकते हैं, या फिर हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री जानवा माता, उनका आज आविर्भाव दिवस है। और सीता माता का भी आज आविर्भाव दिवस है और मधु पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। तो शुरू करने से पहले हम लोग पहले समाधि पुस्तक से महानिधि स्वामी महाराज की इन आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे। श्री मधु पंडित गोस्वामी श्री कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह की स्थापना की। लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के वंशीवट तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला। श्री गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। भक्ति रत्नाकर के कथा अनुसार श्री गोपीनाथ सर्वदा यमुना के रमणीक वंशीवट तट पर क्रीड़ामग्न रहते हैं। उनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक को हर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की शामक मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है, ये तत्क्षण भौतिक अस्तित्व की धधकती हुई ज्वाला को शांत कर देती है। समर्पित मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित हैं। श्रीनिवास नरोत्तम एवं श्यामानंद द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथ से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपकलता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजित है। तो दरअसल श्रीमद् मधु पंडित एक हमारे ऐसे आचार्य हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानने के लिए मिलता है। जैसे पिछली बार भी जब हमने चर्चा की थी तो हमने ये चर्चा किया था कि जो भी हमारे आचार्य हैं, क्योंकि इनके अंदर पब्लिसिटी का कोई लोभ नहीं रहता, लालच नहीं रहता। अगर आजकल हम किसी को देखेंगे कि कोई व्यक्ति छोटे से छोटा काम करता है तो सोचता है उसका नाम आए, उसकी फ़ोटो आए, लोग जाने कि किसने किया है आखिर ये। पर हमारे जो आचार्य हैं उनके अंदर ये भाव नहीं था। इवन दरअसल हमारे कुछ आचार्य ऐसे हैं जिनके पास जब दूसरे आचार्य जो उनसे शिक्षा लेते थे, जब आशीर्वाद देने के लिए जाते थे तो वो एक ही शर्त पे आशीर्वाद देते थे कि उनकी पुस्तकों में उन भक्त का नाम कहीं मेंशन नहीं होगा। इसलिए मधु पंडित गोस्वामी के बारे में हमें बहुत कम जानने के लिए मिलता है। श्री जानवा माता श्री नित्यानंद की दो पत्नियां श्री वसुधा एवं श्री जानवा देवी भगवान बलराम की नित्य प्रेयसियां वारुणी व रेवती की विस्तार स्वरूप हैं। पंचतत्व तथा चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तिरोधान के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतुरी में एक विशाल संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। गौरांग महाप्रभु के सहस्त्र अनुयायियों जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी चैतन्य, परमेश्वर एवं मिनिकेतन राम ने प्रथम खेतुरी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने गौरांग का आविर्भाव दिवस गर्जनशील कीर्तन, उमंगपूर्ण नृत्य तथा रसवंत प्रसाद के साथ मनाया। अभिराम अर्चा विग्रहों के 6 समूह स्थापित किए गए। श्री जानवा माता ने अनुपम भोज पकाया तथा स्वयं समस्त वैष्णव वृंद को परोसा। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों के वहां सहसा प्रकट हो जाने से सब आह्लादित हो उठा। जानवा माता के स्नेही भक्तजन उन्हें माँ जानवा के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने संपूर्ण गौर मंडल तथा ब्रज मंडल की यात्रा की। जहाँ भी वे गए गौर भक्तगण ने प्रसन्नतापूर्वक उनका सेवा सत्कार किया। नित्यान स्वरूपिणी के नाम से प्रख्यात जानवा देवी प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत थी। अपने अनुकंपामय प्रचार द्वारा उन्होंने अनेक नास्तिकों व पापियों का निस्तार किया। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद कल्याण कल्पत्रु में जानवा माता के प्रति यह प्रार्थना करते हैं, हे जानवा देवी, इस दास पर करुणा कीजिए। अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन की कष्ट परिस्थिति से मुझे मुक्त कीजिए। मैंने दृढ़तापूर्वक आपके चरण कमल रूप नाव के शरणागत होकर इस भव सागर को पार करने का निर्णय कर लिया है। आप नित्यानंद शक्ति हैं, आप कृष्ण भक्ति के गुरु हैं। कृपया इस दास को अपने कल्याण अपने कल्पत रूप पद कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पामरों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा याचना करते हुए ये तुच्छ पातकी आपके पावन चरणों में प्रणत है। जनश्रुति के अनुसार श्री जानवा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग किया। ब्रज लीला में वे अनंग मंजरी हैं। तो जानवा माता के बारे में ये बताया जाता है कि जैसे बताया गया है ब्रज लीला में वे अनंग मंजरी हैं, और अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है और जो विशेष रूप से राधा रानी की सेवा करती हैं और राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। और जानवा माता के लिए बताया जाता है कि जब भी जानवा माता कहीं किसी भी स्थान पर जाती थी, जानवा माता जहाँ पर वैष्णवों का समूह होता था तो उनका बहुत आदर सत्कार होता था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के बाद वैष्णव नित्यानंद प्रभु और भी जो हमारे छह गोस्वामी हैं, जब वो अप्रकट हो गए तो अप्रकट होने के बाद जानवा माता ही जो गौड़िया वैष्णव हैं जो वैष्णवों को लीड करती थी, आगे बढ़ाती थी। और बताया जाता है जब जानवा माता राधा कुंड पर जाती थी तो तीन तीन चार चार घंटे तक रघुनाथ दास गोस्वामी और जानवा माता कृष्ण कथा करते थे, गौर कथा करते थे। और जानवा माता का ये विशेष योगदान है कि उन्होंने हमारी जो संस्था है गौड़िया वैष्णव संस्था, इसे सेव करके रखा। जब षट गोस्वामी अप्रकट हो गए थे तो उसके बाद जानवा माता की वजह से ही ये सब चीज़ें हमें मिल पाई। और जानवा माता ही नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य सब जितने भी और भी आचार्य गण थे उनको गाइड करती थी कि किस प्रकार आगे वॉक करना है, किस प्रकार प्रचार आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो ये कुछ संक्षिप्त में गौड़िया वैष्णव चरितामृत से हमने आचार्यों के बारे में पढ़ा। श्री जानवा माता गोस्वामी जी की, श्री श्री मधु पंडित जी की। तो अब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे। यहाँ पर तो श्लोक आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तत् अघं हित्वा आवेश्य तत् अघं हित्वा बहवस्तद् गतिं गतः कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तत् अघं हित्वा बहवस्तद् गतिं गतः कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तत् अघं हित्वा बहवस्तद् गतिं गतः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कामात काम से, द्वेषात घृणा से, भयात भय से, स्नेहात स्नेह से, यथा तथा भक्त्या भक्ति से, ईश्वरे ईश्वर में, मनः मन आवेश्य लीन करके, तत् उस अघम पाप को, हित्वा त्याग कर, बहवः अनेक तत् उस गतिम मुक्ति के मार्ग को, गतः प्राप्त हुए। अनुवाद साथ साथ दोहराइएगा। अनेका अनेक व्यक्तियों ने अत्यंत ध्यान से तथा पापपूर्ण कर्मों को त्याग कर मात्र कृष्ण का चिंतन करने से मुक्ति प्राप्त की। यह ध्यान काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं ये बताऊंगा कि कोई किस प्रकार भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि प्रामाणिक श्रोता कृष्ण व गोपियों की लीलाओं को जो कामपूर्ण सी प्रतीत होती हैं श्रीमद् भागवत से सुनता है, तो उसके हृदय की काम वासना जो बद जीव के हृदय रोग का कारण है विनष्ट हो जाएगी और वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। यदि कोई कृष्ण के साथ गोपियों के विषयी आचरण के श्रवण मात्र से विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से गोपियां कृष्ण के पास जाकर ऐसी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो गई। इसी प्रकार शिशुपाल तथा अन्य लोग जो कृष्ण से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, वे भी ईर्ष्या से मुक्त हो गए। नंद महाराज तथा माता यशोदा स्नेह के कारण कृष्ण भावना भावित भावनामृत में लीन रहते थे। जब मन किसी न किसी तरह से कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है, तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो जाता है और आध्यात्मिक अंश कृष्ण का आकर्षण प्रकट हो जाता है। इससे परोक्षतः यह पुष्टि होती है कि यदि कोई ईर्ष्यावश ही कृष्ण का चिंतन करता है, तो मात्र चिंतन करने के कारण वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। इसके उदाहरण अगले श्लोक में दिए गए हैं। हरे कृष्णा। तो ये आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये बहुत ही रोचक श्लोक है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जो भक्त हैं, चाहे वो प्रेम के कारण हो अपने काम वासना के कारण, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष के कारण हो, चाहे वो भय के कारण क्यों ना हो, चाहे स्नेह के कारण क्या ना हो, चाहे भक्ति के कारण क्यों ना हो, पर भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया। तो यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार उन्होंने अपना ध्यान जो भगवान पे लगाया, चाहे उनका कारण अलग था, तरीका अलग था, पर उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरीके से पूर्ण रूप से भगवान में लगाया। तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। कि भगवान क्या कह रहे हैं उसमें कि जो अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब क्या है कि और कोई भाव नहीं होना चाहिए, अनन्य भाव, जो अनन्य भाव से भगवान कह रहे हैं मुझमें ध्यान लगाता है। देख कभी कभी भक्तों का प्रश्न होता है कि देखिए प्रभु जी, हम लोग कृष्ण भावनाविद में काफ़ी लंबे समय से हैं, पर अभी भी हम लोग दुखी हैं, या हमारी जो ज़रूरतें हैं पूरी नहीं हो रही यहाँ पर, या इतने दुख हैं, इतने कलेश हैं, क्या करें उसमें। तो देखिए सबसे पहले तो जो भगवान हैं, हमें समझना चाहिए कि वो कोई ATM मशीन नहीं है जिसमें हम कार्ड डालें कभी भी और पैसा निकाल लें, ठीक है ना। तो हम जब भी भगवान के पास आएँ हमें तो किसी भौतिक इच्छा के साथ तो जाना ही नहीं चाहिए। पर उसके बाद भी जो भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, पर भगवान कब ये करेंगे इससे पहली वाली लाइन में बता रहे हैं जब कोई अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, बाय रिमेम्बरिंग मी, भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करके वन हु इज इम्प्योर बिकम्स प्योर, जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो सकता है। बाय रिमेम्बरिंग मी वन हु फॉलोज नो वॉज बिकम्स अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ वॉ, कि जो किसी प्रकार की शपथ, जो किसी प्रकार की शपथ को पूरा नहीं कर सकता वो हर प्रकार की शपथ को सख्ती से पालन करने में सक्षम बन जाता है। By remembering me, one who is desireless develops desire to serve me, कि मेरा स्मरण करने से जो व्यक्ति desireless है, जिसमें कोई इच्छा नहीं आती, उसके अंदर भी एक इच्छा प्रकट होती है मेरी सेवा करने की। By remembering me, one who studied no Vedic mantras becomes an expert knowers of the Vedas, भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करने से जिसने कभी किसी मंत्र का जप नहीं किया वो एक्सपर्ट बन जाता है, निपुण बन जाता है वैदिक मंत्रों का जप करने के लिए। तो ये भगवान का स्मरण करने का, स्मरण करने से ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं दरअसल। और स्मरण के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए, जब हम रिमेम्बरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले कि अगर हम किसी चीज को स्मरण करने चाहते हैं तो हमारा उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। अगर हमारा किसी चीज़ में एब्जॉर्प्शन नहीं है और अगर हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते तो हम कभी उसका स्मरण नहीं कर पाएंगे। जैसे एक लड़का और एक लड़की के उदाहरण से, एक पुरुष और स्त्री के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जब एक पुरुष एक प्रेमी एक प्रेमिका से प्रेम करता है तो हमेशा किसका चिंतन करता रहता है, उस प्रेमिका का, कैसे जाऊँगा, कैसे मिलूँगा, क्या तोहफा लेके जाऊँ, क्या करूँगा, क्या बात करूँगा, हमेशा यही चलता रहता है उसके अंदर, क्योंकि उसने प्रायोरिटी किसको दी है, अपनी प्रेमिका को। तो पूरी तरीके से उसका मन एब्जॉर्ब्ड है उसमें। और इसी प्रकार से जैसे कुछ लोगों का एब्जॉर्प्शन होता है धन में, बिजनेस में, तो हर समय सोते जागते हर परिस्थिति में हर स्थिति में वो क्या सोचते हैं, पैसे का स्मरण करते हैं, कैसे बिजनेस बढ़ाऊं, कैसे और धन आ सकता है, तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर हम किसी का स्मरण करना चाहते हैं, अगर हम लोग किसी पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। जैसे अभी मंदिर में हमने डीटी वर्शिप सेमिनार हुआ था तो भक्तों का उसमें रियलाइजेशन था कि सेमिनार के दौरान उनको सपने में भी डीटी वर्शिप की चीज़ें नजर आती थी, ऐसी स्थिति थी सपने में भी, जब वो रात को सो रहे होते सपने में उनको लगता था कि हाँ ठीक है ये सेवा करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन था उसमें। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, हमारा पूरा विचार उसमें स्थित होना चाहिए। और जैसा इसी के पिछले श्लोक में बताया गया है, एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवाल के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। तो किस प्रकार वो कीड़ा जो होता है वो मधुमक्खी का स्मरण करता रहता है और स्मरण कर्म मात्र से वो मधुमक्खी बन जाता है। तो हमारे साथ भी ये होता है, बताया था ना, यू हम जिस चीज़ का विचार करते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक, हम जिस भी चीज़ का विचार क्यों ना करें हम अल्टीमेटली वही बन जाते हैं। तो अगर हम कोई पॉजिटिव विचार करें तो पॉजिटिवली वो चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, पर अगर हम कुछ नेगेटिव विचार करें तो क्या होगा, वही नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। जिस प्रकार मान लीजिए हम मंदिर में होते हैं, भक्तों के साथ होते हैं या घर में होते हैं, अगर हम किसी गलत व्यक्ति पे या किसी गलत विषय पे विचार करें या किसी गलत आदत पे विचार करें तो आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि वो आदत अब आपके अंदर आने लगी है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के निरंतर रूप से दोष पर चिंतन कर रहे हैं। और अगर हम किसी के गुणों पर चिंतन करें तो थोड़े समय में आप देखेंगे क्या वो गुण हमारे अंदर आने लगे हैं। तो चिंतन का सबसे बड़ा यही एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, फायदा भी और नुकसान भी है, कि हमें वैसा ही बना देती है जिस चीज का हम चिंतन करते हैं। तो जब हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो कृष्ण का चिंतन करने मात्र से हम क्या होते हैं, कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं। तो ये चिंतन करने का फायदा है। और अगर हम माया का चिंतन करते हैं तो हम माया भावना भावित हो जाते हैं, हम हर तरफ माया को ढूंढते हैं, हर तरफ गलतियां ढूंढते हैं, नुक्स ढूंढते हैं, नुकसान ढूंढते हैं, है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार मधुमक्खी होती है, एक मधुमक्खी अगर बहुत बड़ा समझ लीजिए मल का स्थान है वहां पर एक छोटा सा पुष्प है, छोटा सा फूल है, तो मधुमक्खी क्या करेगी, किसी मल के स्थान पर नहीं जाएगी, उस पुष्प पर आके बैठेगी और उसका रस चूस लेगी। तो ये मधुमक्खी का गुण है। और एक जो मक्खी होती है फ्लाई, वो क्या करती है, मान लीजिए गार्डन बहुत सुंदर फूलों का बागान है और किसी ना किसी प्रकार से किसी जीव आत्मा ने वहां पर मल डाला है, तो वो किसी फूल के ऊपर नहीं बैठेगी, उस मल के ऊपर आके बैठेगी। तो हमें अपनी आदतों को, हैबिट्स को डेवलप करना है ताकि हम अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव वे में लेके जा सकें और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव देख सके हम लोग। तो क्योंकि जितना हम पॉजिटिव पे मेडिटेट करेंगे, जितना पॉजिटिव पे ध्यान करेंगे, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। आप देखिए, किसी नेगेटिव व्यक्ति से अगर आप बात करें तो उसका एक अलग ऑरा होता है ना, उसके अंदर से एक अलग तेज निकल रहा होता है काले रंग का ना, और वो उस तेज मात्रा से जैसे आप उसके आसपास आएंगे, आप डिस्टर्ब फील करना शुरू करेंगे अपने आप को। इसलिए ही बताया गया है, भक्ति में जब हम आए तो अच्छे भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जब हम अच्छे भक्तों का संग करते हैं, उन भक्तों का संग जिनका मार्ग पॉजिटिविटी ही है, क्योंकि देखिए भौतिक संसार में और स्पेशलिटी जो कलयुग की है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा मिलेंगी और पॉजिटिव कम भी नहीं कह सकते, बहुत रेयर मिलेंगी। तो भक्तों को क्या करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार वो पॉजिटिविटी को उठा सकें, पॉजिटिविटी को चुन सकें। तो हमें क्या बनना पड़ेगा, मधुमक्खी या वो मक्खी, मधुमक्खी बनना है। मधुमक्खी ऐसी आदत डालनी है, मधुमक्खी नहीं बनना। तो हमारा जो मुख्य कर्तव्य है दरअसल, जिस पे सारे नियम डिपेंड करते हैं, वो है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमारे लिए टू डू सिर्फ यही है कि हमेशा भगवान का स्मरण करें और कभी भी भगवान को ना भूलें। और क्या नहीं करना हमें, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति। क्योंकि अभी हमारी जितनी भी चेतना है ये इंद्र तृप्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है, किस प्रकार मैं अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट्स दूं, है ना, अच्छी लग्जरीज मिले, शारीरिक रूप से कोई दुख नहीं आना चाहिए, हर प्रकार की खुशी आए। तो हमारी जो विचारधारणा है उसी के आसपास, किस प्रकार इस प्रेजेंट वर्तमान काल में मैं इंद्र तृप्ति अच्छी तरीके से कर सकूं, किस प्रकार मैं भविष्य में इंद्र तृप्ति अच्छी कर पाऊंगा। और कभी कभी हम इस पे विलाप करते हैं, लेमेंट करते हैं कि किस प्रकार मैं पास्ट में इंद्र तृप्ति अच्छी नहीं कर पाया। तो दरअसल हमारी जो चेतना है ये इंद्र तृप्ति के इर्द गिर्द घूम रही होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसी में घूम रही होती है। तो हमें क्या करना है, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना है, उठाना है। और ये उठा पाएंगे हम लोग पॉजिटिव कॉन्शियसनेस से, वो है भगवान का स्मरण करके, बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बताते हैं, स्मरणम मीन्स रिमेम्बरिंग, स्मरण का मतलब है भगवान का रिमेम्बर करना, स्मरण करना। इन दिस वे इफ यू कॉन्टिन्यू ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, और इस प्रकार से अगर हम भगवान का हमेशा स्मरण करते रहें, रिमेम्बरिंग अबाउट हिज नेम, भगवान के नाम का, फेम क्वालिटीज पास्ट टाइम, भगवान के नाम रूप गुण लीला, देन योर लाइफ इज परफेक्ट। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब हम ये कार्य करेंगे तो हमारा जीवन परफेक्ट बन जाएगा। दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर, वासुदेव भक्ति भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति योग, दिस इज भक्ति योग। तो भक्त बता रहे हैं कि यही भक्ति योग है, क्या, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, दीज आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ यू एक्सेप्ट ऑल और वन और टू और थ्री। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये बहुत सारे प्रोसेस हैं, इसमें से आप चाहे एक को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे दो को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे सबको एक्सेप्ट कीजिए, पर हमारे लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है। और बता रहे हैं यहां पर कि इफ ही डजंट प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग कृष्णा, अगर कोई भक्त कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करने की प्रैक्टिस नहीं करता, वाई ही स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, जिस समय वो भौतिक संसार में स्ट्रगल कर रहा है, then it will not be possible for him to remember Krishna at the time of death. तो मृत्यु के समय भी उसको, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो भगवान का स्मरण कर सके। तो देखिए, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रगल है। आप विश्वास करते हैं इस बात पे, स्ट्रगल है हमारे जीवन में, नहीं है? जो स्टूडेंट्स के लिए हैं उनके लिए पढ़ाई का स्ट्रगल है, जो हाउसवाइफ्स हैं उनमें घर में बच्चों की टेक केयर करना, बच्चों का ध्यान रखना, ये स्ट्रगल है। जो बिजनेस पे जाते हैं, जॉब करते हैं, बाहर इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आजकल, अपने जॉब को मेंटेन करना ही इतना बड़ा स्ट्रगल है, तो हर प्रकार का स्ट्रगल है भौतिक संसार में। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस स्ट्रगल के साथ जो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया वो मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रगल्स हैं ये छोटे छोटे दुख हैं। जब हम इन छोटे छोटे दुखों में भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे तो जो सबसे बड़ा दुख आएगा, कष्ट आएगा, उसमें भगवान का स्मरण कैसे करेंगे। तो दरअसल ये जो छोटे छोटे दुख हमारे जीवन में आते हैं ये एक समझ लीजिए प्रैक्टिस है हमारे लिए, है ना। जब कोई व्यक्ति क्रिकेट में जाता है या कुछ भी करता है तो कुछ प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उससे पहले, तो ये भी एक प्रैक्टिस मैच की तरह है। जब हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कि इन छोटी छोटी डिफिकल्टीज में हम जब भगवान का स्मरण कर पाएंगे तो जब हमारी लाइफ में सबसे बड़ी डिफिकल्टी आएगी तो तब भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो जैसे श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के 33वें श्लोक का 33वें अध्याय का 39वां श्लोक। दरअसल 33वां अध्याय कौन सा है भागवतम का, 10वें स्कंद का? हर व्यक्ति उसके बारे में जानना चाहता है, पूछना चाहता है, सोचना चाहता है, समझना चाहता है। क्या नाम है उसका? रासलीला। हर व्यक्ति, प्रभुपाद जी ने अपने हर स्कंद के बिगनिंग में बताया गया कि सबसे रिक्वेस्ट है भक्तों से, जो भी भागवतों को पढ़ रहे हैं कृपया जंप मत कीजिए, एक एक स्कंद करके जाइए। जो पहले 9 कैंटो हैं वो प्रिपरेशन है हमारी 10th कैंटो को पढ़ने के लिए। तो रासलीला का जब अध्याय खत्म होता है तो श्रीमद् भागवतम में कई अध्यायों के बाद उस अध्याय की फलश्रुति बताई गई है। फलश्रुति का मतलब ये करने से आपको क्या फायदा होगा ये पढ़ने से। तो ध्यानपूर्वक सुनेगा, जो रासलीला का अध्याय पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा जाके रासलीला का अध्याय पढ़ें। जिन्होंने भागवतम नहीं पढ़ी उन्हें चाहिए कि पहले स्कंद के पहले श्लोक से शुरू करते हुए फिर इस अध्याय तक पहुंचे। एनीवन हु फेथफुली हियर्स और डिस्क्राइब्स द लॉर्ड्स प्लेसफुल अफेयर्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त श्रद्धा से जो सुनता है और डिस्क्राइब करता है, समझाता है द लॉर्ड्स प्लेफुल अफेयर्स, भगवान के जो अफेयर हैं, भगवान का जो संबंध है विद द यंग गोपीज ऑफ वृंदावन, जो युवतियां हैं वृंदावन की उनके साथ, विल अटेन द लॉर्ड्स प्योर डिवोशनल सर्विस, उसको क्या मिलेगा? भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। दस ही विल क्विकली बिकम सोबर, और क्या होगा? बहुत जल्दी सोबर बन जाएगा। एंड कॉन्कर लस्ट, और जो भी उसके अंदर कामुक वासनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, द डिजीज ऑफ द हर्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि इस भौतिक संसार के जितने भी लोग हैं सब हर्ट के पेशेंट हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है हमारे को भौतिक हार्ट अटैक ना आए, भौतिक हर्ट डिजीज ना हो, पर हमारा जो हर्ट का डिजीज है ये दूसरे प्रकार का है, क्योंकि इस हृदय में क्या भरा हुआ है? काम भरा हुआ है, लस्ट भरा हुआ है। और बताया गया है कि ये जो काम है, जो कामुक वासनाएं हैं, दरअसल यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि बाय रीडिंग पोर्नोग्राफिक लिटरेचर और हियरिंग अबाउट मटेरियल रोमांस, कि अगर हम पोर्नोग्राफिक लिटरेचर पढ़ें या फिर कोई रोमांटिक पिक्चर या कोई रोमांटिक गाने या कुछ भी सुने उसके बारे में, वी सर्टेनली डू नॉट कॉन्कर सेक्स डिजायर, हमारे अंदर जो कामुक इच्छाएं हैं हम निश्चित रूप से इसे खत्म नहीं कर पाएंगे, बट रैदर इंक्रीज अवर लस्ट, इससे क्या होगा हमारे कामों की इच्छाएं और बढ़ेंगी। परंतु जो भगवान की लीला हम पढ़ते हैं, जब भगवान की हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं गोपियों के साथ, तो उसके पढ़ने मात्र से क्या होता है, जो हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो खत्म होती हैं। तो दरअसल ये जो लस्ट है, कामुक वासनाएं, इसे एक रस्सी के समान बताया गया है, और इसी रस्सी से जो जीव है इस भौतिक संसार में बंधा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर इस भौतिक संसार से निकलना चाहता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि हमें अपनी लस्टी डिजायर्स को, कामुक वासनाओं को खत्म करना होगा, क्योंकि ये बंधन का कारण है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स थी, क्रेन समझते ना, बुलडोजर क्रेन्स, बहुत बड़े बड़े, एक फैक्ट्री थी। तो प्रभुपाद जी चलते चलते जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में, और प्रभुपाद रुक गए। प्रभुपाद जी ने क्रेन्स की तरफ देखा और शिष्यों से पूछा ये क्या है। तो कुछ शिष्यों ने बोला प्रभुपाद ये क्रेन है, कुछ शिष्यों ने बताया प्रभुपाद ये फैक्ट्री है, और सब भक्तों ने अलग अलग उत्तर दिए। प्रभुपाद कहते नहीं, दिस इज लस्टी डिजायर्स। तो शिष्यों को समझ नहीं आई ये कैसे प्रभुपाद ने बोला। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्योंकि जिस व्यक्ति की ये फैक्ट्री है, दरअसल वो अपनी कामुक इच्छाओं को एक छोटे घर में पूरा नहीं कर पा रहा था और उसके पास पूरी फैसिलिटी नहीं थी अपनी कामों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसलिए उसने एक बड़ी फैक्ट्री खोली है ताकि वो अपनी कामों की इच्छाओं को पूरा कर सके। तो इस संसार में हर व्यक्ति कोई भी कार्य क्यों नहीं कर रहा, उसका कारण सिर्फ ये लस्टी डिजायर्स है। और दरअसल ये जो लस्ट है एक जंग, तो ये जो कामुक वासनाएं हैं ये जंग के समान हैं। जिस लोहे पे जंग लगा होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता कभी अपने प्रति। जितना ज्यादा जंग लगा होगा उसमें, जितना ज्यादा पुराना लोहा है उसमें जंग लगा है, वो अपना जो अस्तित्व है उसको खो देता है, वो मैग्नेट वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा मैग्नेट के प्रति। तो जो भी जीव है जितनी जितनी मात्रा में उसके अंदर कामुक इच्छाएं भरी हुई हैं, वो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा और कभी भी कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा। तो ये लस्ट एक रस्ट के समान है जो हमें खोखला करता जा रहा है ना। किसी लोहे पे अगर रस्ट लग जाए तो क्या होता है, लोहे का थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है वो लोहा। तो उसी प्रकार से जीवात्मा, हालांकि ये भगवान का दास है परंतु काम वासनाओं के कारण ये खराब होता जा रहा है। श्रीमद भगवद गीता में बताया गया है, आवृतम ज्ञान अमेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण नलेन च। दस द वाइस लिविंग एंटिटीज प्योर कॉन्शियसनेस बिकम कवर्ड। क्योंकि जो भी जीव आत्मा है वो नेचुरल रूप से बुद्धिमान है, वहां पर क्योंकि भगवान का अंश है, बिकम्स कवर्ड बाय द एटर्नल एनिमी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। पर क्या है, ढकी हुई है अभी किसके द्वारा, बाय द एटर्नल एनिमी, जो शाश्वत दुश्मन है हमारा, और वो क्या है, काम, विच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड विच बर्न्स लाइक फायर, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और जो किस प्रकार चलता रहता है, अग्नि के समान चलता रहता है। तो दरअसल ये जो कामुक वासनाएं हैं, इन कामुक वासनाओं के कारण ही जीव आत्मा हमेशा भयभीत रहता है और अंधा रहता है, बिल्कुल ब्लाइंड है ना। इसलिए हमारे आचार्य ने बोला है, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले आर दुख नाही, कि केवल जीव को ये विश्वास करना है कि वो कृष्ण का दास है, कर ले आर दुख नाही, और कोई दुख नहीं है। क्योंकि हमें ये विश्वास नहीं है हम कृष्ण के दास हैं, इसलिए क्या, असत्य र सत्य करे मानी, हमने हर असत्य चीज को क्या माना हुआ है, सत्य माना हुआ है। हर चीज में हम लोग खुशी ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते हैं, क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस जिस स्थान पर है उसे हम खो चुके हैं। तो इसी प्रकार क्योंकि एक कामुक वासना है, जब कोई मटेरियल व्यक्ति सुनता है तो उस गोपीज को भी और राधा रानी को भी कंपेयर इसी भावना से करता है कि इनमें भी कामुक वासनाएं थी। तो हालांकि गोपियां, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार का भौतिक एजुकेशन नहीं था, एक एक प्रकार से गांव की लड़कियां थी बस, किसी प्रकार का उनको ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, क्योंकि उनके अंदर की जो कामुक वासनाएं थी वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं थी, वो किस लिए थी, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। चैतन्य चरितम बताया गया है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, द डिजायर टू ग्रेटिफाई वंस ओन सेंसेस इज काम। जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया जाए उसे क्या कहते हैं, काम, और जो कृष्ण की इंद्रिय की तृप्तियों के लिए किया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं, उसे धरे प्रेम नाम। तो प्रेम और काम में बहुत अंतर है। हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जा रहे थे तो गोपियां कृष्ण को रोक रही थी, तो कभी कभी ये विचार आता है मन में कि गोपियां कृष्ण को इसलिए रोक रही थी कि उनकी कामुक वासनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। परंतु दरअसल गोपियों को कृष्ण को रोकने का यह कारण था क्योंकि गोपियां जानती थी कि कृष्ण हमारे बिना खुश नहीं रह सकते। तो ये गोपियों का मेन मोटिव था इसके पीछे। और ब्रज की गोपियों में, और जैसे हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं कुब्जा की कथा, तो कुब्जा में और ब्रज गोपियों में अंतर है, क्योंकि कुब्जा भी अपने काम को सेटिस्फाई करना चाहती थी, पर उसमें जो आनंद चाहती थी वो अपने लिए चाहती थी, परंतु जो वृंदावन की गोपियां जब अपने काम को तृप्त करना चाहती थी तो वो दरअसल अपने काम को तृप्त नहीं करना चाहती थी, वो कृष्ण की प्रसन्नता चाहती थी। एक बार इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी को राधा रानी की सखियां हमेशा डेकोरेट करती हैं, सजाती हैं और उनका श्रृंगार करती हैं, तो राधा रानी की सखियां जब उनको श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार के बाद राधा रानी की सखियों ने उनको एक मिरर दिखाया, शीशा, और जैसे ही राधा रानी ने शीशा देखा, राधा रानी बहुत खुश हुई और राधा रानी ने बोला मुझे तुरंत लेके जाओ कृष्ण के पास, क्योंकि मैं चाहती हूं कि कृष्ण मुझे भोगे। तो ये इस चेतना को कहते हैं उच्चतम चेतना, अपनी प्रीति के लिए नहीं, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए, किस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न कर सके। और इसे ही चैतन्य चरितार्थ में उदाहरण से बताया गया है कि दो प्रकार के मेटल होते हैं, एक गोल्ड और एक आयरन, एक सोना और एक लोहा। तो जो हम जो इसमें पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो हम काम पढ़ते हैं, लस्ट पढ़ते हैं, ये किस प्रकार है, सोने के समान, जो आध्यात्मिक जगत का काम है, और जो भौतिक जगत का काम है वो किस प्रकार है, एक लोहे के समान। हालांकि देखने में दोनों मेटल्स ही हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बताया गया है, इसी श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार गोपियों ने अपनी काम वासनाओं से, और किस प्रकार कुछ लोगों ने अपने द्वेष के कारण, भय के कारण भगवान को प्राप्त किया। उसका उदाहरण कृष्णा बुक में जैसे हम पढ़ते हैं शिशुपाल की कथा। देखिए कभी कभी माता पिता में आपस में लड़ाई होती है, जब माता बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था उसने पहला शब्द बोला था मम्मा, और पिताजी कहते हैं नहीं, इसने पहला शब्द बोला था पापा, और चाचा कहते हैं नहीं, इसने पहला शब्द बोला था चाचा। पर शिशुपाल ने अपने जीवन का जो पहला शब्द बोला था वो कृष्ण की निंदा थी। पैदा होते ही जो पहला शब्द उसने मुंह से निकाला वो कृष्ण की निंदा थी। दरअसल शिशुपाल को, जब शिशुपाल पैदा हुए तो उनके जो पिता थे दम घोष उनको फेंकना चाहते थे, क्योंकि उनके चार हाथ थे और तीन पैर थे, ऐसा बच्चा कौन रखना चाहता है घर में, है ना, अजीब। आप सोचिए ना, कोई बच्चा यहाँ पर घूमता होना जरा जिसके चार हाथ और तीन पैर हो, कैसा लगेगा वो। तो दम घोष भी जब उन्होंने देखा तो फेंकना चाहते थे उसको, तो परंतु फिर उनको पता लगा कि जब इनके रिलेटिव्स में ही, इनके रिश्तेदारों में ही एक ऐसा व्यक्ति जब इसे उठाएगा, जब कृष्ण ने उनको उठाया दरअसल, तो उनके दो भुजाएं और एक पैर गिर गया, तो उनको पता लगा कि कृष्ण के हाथों ही इनकी मृत्यु होगी। परंतु कृष्ण ने इतना आश्वासन दिया कि जब तक मैं इसकी 100 गलतियों को माफ करूंगा, ऐसी त्रुटियों को माफ करूंगा जिसमें व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, ऐसी 100 गलतियों को भी माफ करूंगा मैं। तो दरअसल इसमें भी काफी लोगों की अलग अलग कमेंट्रीज हैं, पर फिर भी जब शिशुपाल लगातार गलती करते रहे, अपराध कृष्ण के प्रति, कृष्ण को अलग अलग चीजों से गलत साबित करते थे, तो एक बार जब अपनी लिमिट को उन्होंने क्रॉस कर दिया तो कृष्ण हमेशा काउंटडाउन गिन रहे थे, 95, 96, 97, 98, 99, और जैसे ही 100 हुआ कृष्ण ने उनका वध कर दिया। तो शिशुपाल और कंस, जब हम कंस की कथा पढ़ते हैं कृष्णा बुक में तो बहुत ही एंटरटेनिंग है ये। हरे कृष्णा, जो भी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है बातें ना करें, आप कथा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज आप बातें मत कीजिए और बच्चों को संभाल के रखिए आप। तो कंस की कथा में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार कंस भगवान से इतना द्वेष करता था, इतना द्वेष करता था कि दिन रात सोते हुए सपने में हर परिस्थिति में वो क्या देखता था, कृष्ण का स्मरण करता था, और जब वो चलता था तो उसको अपनी परछाई में छिद्र नजर आते थे। जब वो मिट्टी के ऊपर चल के जाता था तो उसको अपने पैरों की जो फुटप्रिंट थे वो नजर नहीं आते थे, तो इतना वो पागल हो चुका था। और एक और उदाहरण आता है द्वेष का, हिरण्यकश्यपु का। तो हमने पहले भी चर्चा की थी एक बार अपने डीडी वर्शिप कोर्स में कि जब हिरण्यकश्यपु जब गए तपस्या करने के लिए, एक बार जा रहे थे तो जब तपस्या करने गए तो उन्होंने तपस्या शुरू की अपनी कड़ी तपस्या। उनकी कड़ी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए कि अगर ऐसे ऐसे लोग तपस्या करेंगे तो आगे क्या होगा। तो जब उन्होंने तपस्या की, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करनी शुरू की, तो ब्रह्मा जी परेशान थे और नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने बोला कि पिताजी आप परेशान क्यों हैं। तो उन्होंने बोला देखो ये हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है तो इससे आगे जो पुत्र उत्पत्ति होगी ये भी कैसे निकलेगी हिरण्यकश्यपु जैसी। तो नारद मुनि ने बोला पिताजी आप घबराइए मत, मैं देख लूंगा सारी सिचुएशन। तो हिरण्यकश्यपु जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे उस स्थान पर एक पेड़ के ऊपर नारद मुनि और उनके एक मित्र एक दो पक्षियों के रूप में बैठ गए और उन्होंने बोलना शुरू किया ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे तो परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए ये सुन के। तो उन्होंने आसपास देखा कोई नजर नहीं आया, उन्होंने दोबारा बोला ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। तो उन्होंने देखा ये पक्षी हैं, तो पक्षियों को मारने के लिए भागे पर पक्षी उड़ गए। हिरण्यकश्यप इससे इतना परेशान हो गए कि अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। और इसी चेतना के साथ वो अपने घर में आए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया और उनको कौन पुत्र कौन उत्पन्न हुए, प्रहलाद महाराज। तो इसी प्रकार से जो राक्षस लोग भी हैं उन्होंने कृष्ण का स्मरण चाहे द्वेष से क्यों ना किया हो पर कृष्ण का स्मरण करने मात्र से उन्होंने अपना उद्धार किया। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में और इसका जो अगला श्लोक है उसमें और डिटेल में बताया गया कि किस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि और युधिष्ठिर के बीच का संवाद है, तो बता रहे हैं नारद मुनि कि किस प्रकार मैंने और जो जनरल डिवोटीज हैं आम भक्त हैं उन्होंने किस प्रकार भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त किया डिवोशनल सर्विस के द्वारा। क्योंकि डिवोशनल सर्विस से जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा में लगते हैं तो हम भगवान को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, और जैसे एक उदाहरण है विदुर जी का। तो दरअसल आपको पता होगा जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन ये चाहता था कि कृष्ण दुर्योधन की तरफ से लड़े। तो कृष्ण कहाँ से आ रहे थे, गुजरात से, द्वारका से आ रहे थे हस्तिनापुर। तो दुर्योधन ने क्या किया, बहुत अच्छी सजावट की घर में, और हालांकि इतना द्वेषी था कि उसने अपना कमरा नहीं रखा, दुशासन के कमरे को सजाया उसने कि कृष्ण यहाँ पर आके रहेंगे, बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था की, हर प्रकार की फैसिलिटी उसने रखी वहाँ पर। और कृष्ण जब आए तो कृष्ण निश्चित रूप से उसके महल में गए, और जब दुर्योधन ने बोला कृष्ण को खाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि दुर्योधन ने बहुत सारे भोग बनाए थे कि कृष्ण आएंगे और ये खाएंगे ताकि कृष्ण ये खाएं प्रसन्न हो जाएं और फिर मैं उनसे कोई भी वर मांग लूं। तो जब कृष्ण पहुंचे दुर्योधन के महल में तो कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि देखो दुर्योधन, व्यक्ति दो स्थितियों में खाता है हमेशा, पहली बात जब उसे भूख लगी हो और दूसरा जब कोई स्नेह से खिला रहा हो। तो कृष्ण ने बोला कि देखो ना तो मुझे भूख लगी है और ना तुम स्नेह से मुझे खिला रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगा, है ना। देखिए बहुत जेन्युइन सा है, कोई भी व्यक्ति प्रेम से खाना पसंद करता है ना। हमारे घर में भी अगर मान लीजिए 56 भोग बना हो, एक पत्नी अपने पति के लिए 56 भोग बना के तैयार रखे, पर जैसे ही पति 56 भोग के सामने बैठे खाने के लिए तो पत्नी बोले ले खा मर, तो क्या पत्नी उसे खाएगी, तो क्या पति उसे खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, है ना। हम जो घर में खाते हैं, जो रिलेशन से हम एक्सेप्ट करते हैं वो प्रेम एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। किसी दुश्मन से हम कोई गिफ्ट भी तोहफा भी नहीं लेना पसंद करते, तो प्रेम बहुत जरूरी है। तो कृष्ण ने क्या किया, दुर्योधन की जो फीस्ट बनी थी उस फीस्ट को छोड़कर कहां गए, विदुर जी के घर गए, विदुरानी के घर। और जब कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने साग खिलाया, पर शास्त्रों में मेंशन है कि जब विदुरानी के घर में पहुंचे कृष्ण, तो विदुरानी क्या कर रही थी, कृष्ण को देख के इतना पागल हो गई थी कि प्रेम से केला छिलती थी, केले को फेंक देती थी और छिलका कृष्ण को देती थी, और कृष्ण छिलके खाए जा रहे थे। तो थोड़े समय बाद, क्योंकि विदुर जी घर में नहीं थे, जब विदुर जी आए तो उन्होंने देखा ये सब चीजें क्या चल रहा है, ये कि विदुरानी क्या करे, केले फेंक रही और छिलका खिला रही है। जब ये स्थिति देखी उन्होंने तो विदुर जी ने जगाया विदुरानी को, तुम ये क्या कर रही हो। तो कृष्ण ने बताया कि कृष्ण जो एक्सेप्ट करते हैं, भगवान ने बताया कि भगवान प्रेम एक्सेप्ट करते हैं, भाव ग्राही जनार्दन ना। देखिए मान लीजिए आपको भूख लगी हो अगर, और आपके सामने एक सूखी चपाती और एक मूंग की दाल हो कलकी बनी हुई, अगर आपको भूख लगी है और कोई प्रेम से खिला रहा है तो आपको खाना पसंद करेंगे। अगर ना कोई प्रेम से खिलाने वाला है ना आपको भूख लगी है तो हम खाना पसंद नहीं करेंगे। तो दरअसल इस सेवा के माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति को जीत सकते हैं, सर्विस के माध्यम से। जैसे अभी चंदन यात्रा चल रही है, तो चंदन यात्रा में हम जो भगवान को चंदन लगाते हैं, या माधवेंद्रपुरी ने जो भगवान को चंदन लगाया, ये क्या था, सेवा थी। अभी भी आप, खैर हमारे मंदिर में तो अभी रेगुलर बेसिस पर चंदन नहीं लग पाता, पर अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी में नरेंद्र सरोवर है, और जगन्नाथ जी के पास जगन्नाथ मंदिर में हर डीटीज के एक उत्सव विग्रह हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान कृष्ण के, मदन मोहन जी के, सबके उत्सव विग्रह हैं। तो 21 दिन तक लगातार कृष्ण बलराम के विग्रह को एक नौका में नर्मदा सरोवर में विहार कराया जाता है चंदन लगा के। तो इतना सेवा, इतना सेवा भाव है ना। गौर गोविंद महाराज की भी कथा में बताया था कि एक बार गौर गोविंद महाराज ने जब नया नया मंदिर खोला था, क्योंकि तो गौर गोविंद महाराज श्री प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रहे हैं सेवा में और पूरी तरीके से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया सेवा में, राधा गोविंद देव की, गोपाल जी की सेवा में। तो गौर गोविंद महाराज एक बार सो रहे थे, नया नया मंदिर खुला था भुवनेश्वर का और कृष्ण भगवान, कृष्ण बलराम की नई नई स्थापना हुई थी। तो गौर गोविंद महाराज के सपने में कृष्ण बलराम आए और उन्होंने सपने में बोला, देखिए किस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं। तो कृष्ण बलराम गौर गोविंद महाराज के सपने में आए और उनको उठाकर बोला, भाई सबको चंदन लग रहा है, मुझे चंदन ही लगाओगे क्या? मुझे भी चंदन लगाओ और मेरे लिए भी नौका विहार करो। तो गौर गोविंद महाराज उठे और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को ये बात बताया। सब शिष्यों ने मना कर दिया कि गुरु महाराज आप कह रहे हैं कल करना है, रात को आप बोल रहे हैं कि कर करना है, कैसे हो सकता है ऐसा, कोई प्रिपरेशन नहीं। तो क्योंकि गुरु की इच्छा थी और भगवान चाहते थे, सारे भक्तों ने रात भर मिलकर चंदन किसा, चंदन इकट्ठा किया और बताया गया कि उन्होंने एक टेम्परेरी पाउंड बनाया अपने प्रांगण में, एक तरपाल बिछाकर ईंटों की दीवार बनाई, उसमें पानी भरा, उसी दिन बोट तैयार की, उसी दिन दीवार बनाई, उसी दिन कुंड भरा, उसी में पानी भराया, उसी दिन कृष्ण बलराम को चंदन लगाया और नौका विहार करवाया कृष्ण बलराम को। तो ये सेवा का भाव है, दिस इज सर्विस एटीट्यूड। और जब हम सेवा के भाव, जब हम सेवा करना चाहते हैं, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद करते थे कि हमें भगवान को देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि भगवान हमें देखें। क्योंकि देखिए हम इंजॉयर नहीं हैं, हम इंजॉयड हैं, हम भोगने वाले नहीं हैं, हम भोगे हैं। जब हम भगवान के सामने आते हैं इसलिए नहीं आते कि अब मैं भगवान के दर्शन करके भगवान को भोगूंगा, हम भगवान के सामने इसलिए आते हैं कि भगवान आप हमें भोगिए, अब आप मुझे भोगिए। इस चेतना से हम भगवान के सामने आते हैं, इस चेतना से दर्शन करने आते हैं हम लोग। तो सेवा दरअसल जो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार सेवा के माध्यम से हम किसी भी पर, किसी को भी खरीद सकते हैं ना। जापान में एक स्लोगन है, देयर इज नथिंग एज एक्सपेंसिव एज एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट, कि एक तोहफा किसी से स्वीकार करने से ज्यादा महंगा कुछ नहीं है इस भौतिक संसार में। अगर आपने किसी से तोहफा कुछ ले लिया तो आप बंद गए आप पूरे जीवन के लिए, अब आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो इससे ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसी प्रकार से राम कथा में भी हम लोग सुनते हैं शबरी की कथा। तो शबरी जी की कथा में भी यही आता है कि किस प्रकार शबरी जी में एक भाव था कि वो वैष्णवों की सेवा करना चाहती है, भक्तों की सेवा करना चाहती है। और उसने क्या किया, एक गुरु के आश्रम में गई और गुरु की सेवा की दिन रात। बताया गया शबरी ने गुरु की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि गुरु के सोचने से पहले वो चीज वहां पर पहुंच जाती थी। जो पहले नंबर का शिष्य होता है वो गुरु के सोचने से पहले वो कार्य कर लेता है, दूसरे नंबर का शिष्य कहने पे करता है, तीसरे नंबर का शिष्य गुरु कह कह के थक जाते हैं और सोचूंगा, देखता हूं, कोशिश करूंगा गुरु महाराज। तो पहले नंबर का जो शिष्य है गुरु के सोचने से, तो शबरी गुरु के सोचने से पहले, अपने गुरु के सोचने से पहले हर चीज को सामने ले आती थी। पहले तो शबरी को बहुत भय था कि मैं स्त्री शरीर में हूं, पता नहीं मुझे गुरु स्वीकार करें ना करें। पर शबरी की इतनी सेवा को देखकर उसने गुरु के हृदय को पिघला दिया और गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे घर में एक दिन भगवान आएंगे स्वयं। तो जिस दिन शबरी ने ये बात सुनी उस दिन से शबरी ने अपने घर की सफाई करनी शुरू कर दी। डेली शबरी अपने घर की सफाई करती थी, डेली भगवान के लिए हार बनाती थी कि आज भगवान आएंगे क्योंकि गुरु ने बोला है। और बताया गया कि अनेकों अनेकों दिन भगवान नहीं आए, पर शबरी ने अपना उत्साह नहीं तोड़ा। डेली उसका यही कार्य था, सुबह उठती थी पूरे घर की सफाई करती थी, घर में फूल बिछाती थी, रात राम जी के लिए माला बनाती थी, तैयार रखती थी, नहीं आते थे, सब कुछ फेंकती थी, अगले दिन उठती थी, फिर सुबह दोबारा सब कुछ करती थी। इतना सेवा भाव, इतना सेवा भाव। तो इसका रेसिप्रोकेशन क्या मिला कि एक बार जब राम जी जा रहे थे तो राम जी दरअसल जिस रास्ते से जा रहे थे शबरी का घर वहां नहीं पड़ता था। तो राम जी ने बोला हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे लक्ष्मण को, हम इस रास्ते से जाएंगे। तो राम जी ने क्या किया, शबरी के घर गए और शबरी जब भगवान को खिला रही थी तो क्या खिला रही थी, कैसे बेर, हर बेर को चखती थी पहले, मीठा है खट्टा है, खट्टा है तो फेंक दिया, मीठा है तो राम जी को दिया। तो इसे कहते हैं सर्विस एटीट्यूड, सेवा की भावना, सेवा का भाव। और जब ये सेवा भावना हम लोग अंदर रखेंगे, इस श्रद्धा से हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। हम लोग क्योंकि देखिए अगर हमारे अंदर ये डाउट है कि भगवान को प्रसन्न करना मुश्किल है, तो इसका मतलब हमें ये लगता है कि राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम का हृदय पत्थर का है। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना सबसे आसान चीज है, हमें क्या करना है अपनी तरफ से एक प्रयास करना है, अटेम्प्ट। भगवान हमारे एक अटेम्प्ट को देखना चाहते हैं, हम कुछ कोशिश करें, हम लोग हम हल्का सा प्रयास करें और भगवान आगे हमारी मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में भी, इसको बोल के एंड करेंगे, चैतन्य चरितामृत में भी एक ब्रह्मचारी की कथा आती है, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। दरअसल नरसिंहानंद ब्रह्मचारी की बहुत बड़ी स्टोरी है चैतन्य चरितामृत में, पर बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु हर साल जगन्नाथपुरी से बंगाल में आते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं इस साल, आप लोग हर साल सारे वैष्णव बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इस साल आप लोग मत आना, इस साल मैं आऊंगा आप लोगों के पास। तो सभी भक्तों ने कहा ठीक है। तो इस साल कोई भी भक्त बंगाल से जगन्नाथपुरी नहीं गया, सब लोग भक्त भगवान का इंतजार करते रहे, पर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए। तो एक उनमें से भक्त थे नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने राघव पंडित प्रभु, बड़े मंदिर वाले राघव पंडित प्रभु नहीं, राघव पंडित प्रभु जो गौर लीला में राघव पंडित प्रभु हैं, उनको बोला कि देखिए आप क्या कीजिए, मैं चैतन्य महाप्रभु को बुला के लाता हूँ, आप उनके लिए भोजन की तैयारी कीजिए। तो राघव पंडित ने, क्योंकि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी भक्त थे, तो उनका बात मानकर उन्होंने 3 भोग की प्लेट बनाई। क्योंकि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी नरसिंह भगवान के भक्त थे, तो पहली प्लेट नरसिंह भगवान के लिए, दूसरी प्लेट जगन्नाथ जी के लिए और तीसरी प्लेट चैतन्य महाप्रभु के लिए। ये लगाने के बाद तीनों प्लेट उन्होंने पट को बंद कर दिया और बाहर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी बैठे थे, स्मरण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अंदर प्रकट हो चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भोजन को खा लिया, उसके बाद जगन्नाथ जी के भोजन को भी खा लिया, उसके बाद नरसिंह भगवान के भोजन को भी खाना शुरू कर दिया। अब नरसिंहानंद ब्रह्मचारी से रहा नहीं गया, क्योंकि नरसिंह भगवान का भक्त था। तो उसने, दरअसल चैतन्य महाप्रभु खा चुके थे सब कुछ, फिर भी उसने बोला कि देखिए महाप्रभु, आप में और, वैसे तो नरसिंह और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, पर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने बोला कि देखिए आप में और जगन्नाथ जी में तो कोई भेद नहीं है, पर आप नरसिंह भगवान का भोजन क्यों खा रहे हैं। तो दरअसल स्टोरी बहुत बड़ी है, पर इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के प्रेम से, उनकी श्रद्धा से चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर आए। और जब राघव पंडित ने दरवाजे को खोला, पट को खोला, तो उन्होंने क्या देखा कि तीनों प्लेट खाली हैं, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि चैतन्य महाप्रभु आए थे। उन्होंने क्या सोचा कि जगन्नाथ जी ने खाली होगी। तो एक साल बीत गया उस बात को। अगले साल दोबारा जब जगन्नाथपुरी का फेस्टिवल था, तो इस साल सारे बंगाल से भक्त कहां गए, जगन्नाथपुरी गए। और जैसे ही जगन्नाथपुरी में गए, तो राघव पंडित मिले चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु से जैसे ही राघव पंडित मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राघव पिछले साल जो तुमने मेरे लिए भोग बनाया था ना, वो बहुत स्वाद था। तो जब ये सुनते हैं राघव पंडित, तो उन्हें यकीन होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस दिन आए थे और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने ठीक बोला था। तो दरअसल भगवान हमारे सर्विस एटीट्यूड को, सेवा भाव को स्वीकार करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने यही किया, खुद सेवा करके दिखाई और सेवा भाव को प्रकट किया। जब भक्त लोग स्नान के लिए जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके वस्त्रों को पकड़ के रहते थे, चैतन्य महाप्रभु उनके लिए तिलक खोलते थे कि भक्त लोग बाहर आएंगे तो तिलक लगाएंगे। इतनी सेवा, इतनी मिनरल सर्विस करते थे चैतन्य महाप्रभु उनकी। तो इसी श्लोक में दरअसल समझाने का ये तात्पर्य था कि किस प्रकार अलग अलग भक्तों ने अपने भक्ति भाव से भगवान को प्रसन्न किया है। और इसी श्लोक जैसा एक श्लोक बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 15वें श्लोक में, जिसमें बताया गया, पर्सन्स हु कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट, ऐसे लोग जो हमेशा निरंतर रूप से डायरेक्ट करते हैं, दिशा देते हैं, दियर लस्ट अपने काम को, एंगर अपने क्रोध को, फियर अपने भय को, प्रोटेक्टिव अफेक्शन अपने स्नेह को, फीलिंग्स ऑफ इम्पर्सनल वननेस, जो उनकी इम्पर्सनल वननेस की जो फीलिंग्स हैं उसको, अपने जो साख्य भाव को, अगर जो भगवान हरि में लगाते हैं, are sure to become absorbed in thoughts of him. निश्चित रूप से वो अपने मन को, अपने विचारों को भगवान में लगा पाएंगे और भगवान में ध्यान, भगवान का ध्यान कर पाएंगे. और यही इस श्लोक का तात्पर्य भी है कि किस प्रकार अलग अलग भक्तों ने अपने काम वासना से, अपने द्वेष से, अपने भय से, अपने स्नेह से, यशोदा माता ने अपने स्नेह से किस प्रकार भगवान को जीता, और किस प्रकार जो बाकी भक्त हैं अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को जीत सकते हैं. तो हमें चाहिए कि हम भी निरंतर रूप से हमेशा सेवा में लगे रहें, और सेवा करते समय एक चीज़ का याद रखें कि सेवा करते समय माया निश्चित रूप से बाधाएं डालेगी, क्योंकि उसकी, उसका कार्य यही है, उसकी ड्यूटी यही है कि डिफ़िकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी सिचुएशंस आएंगी हमारे जीवन में, पर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि माया तीन तरीके से लालच देती है, धन, जन, सुंदरी. इस चैतन्य महाप्रभु क्या बोला है, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी, है ना. जब हम ये चीज़ें कर लेते हैं, ना धन, ना जन, सुंदरी, जब इन तीनों से क्या अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, आई नंद तनुज किंकरम, अगले श्लोक पे हम पहुंच पाते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी ने जिसे ट्रांसलेट किया है सम हाउ और अदर. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हम, मैं इस भौतिक संसार में गिर पड़ा हूं, और अब इस विषम मृत्यु संसार से मेरा उद्धार कर मुझे अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए. हम ये प्रार्थना डेली सुबह पढ़ते हैं. तो जिस प्रकार किसी ना किसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में गिर पड़े हैं, हमें उसी किसी ना किसी प्रकार से अपने मन को कृष्ण में लगाना है. हम आपसे ये आशा नहीं करते कि ये सुनने के बाद अब आप द्वेष रूप में कृष्ण भगवान से भक्ति शुरू करें, क्योंकि अगर आप द्वेष करना चाहते हैं तो आपको द्वेष करना पड़ेगा शिशुपाल की तरह, कंस की तरह. अगर इतना द्वेष कर सकते हैं तो जेन्युइन बनता है, अगर छोटा मोटा करेंगे तो उसका फायदा नहीं है. हमारे लिए जो सबसे ईजी और कन्वीनियंट, जो नारद मुनि अगले वर्ष में बताएंगे कि मैंने, और जो जनरल डिवोटीज, आम भक्त जिस प्रकार से भगवान को प्राप्त करते हैं, वो साधन क्या है, डिवोशनल सर्विस का, प्रेममय सेवा का. तो हमें भी चाहिए कि अपने आप को सेवा में लगाएं, और ये ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति सेवा में लगा रहता है वो कभी लेजी नहीं होता. कभी कभी हम डिवोशनल सर्विस का जब नाम सुनते हैं तो हम एक्सटर्नल रूप से लेजी हो जाते हैं. तो हमें एक्सटर्नल रूप से लेजी नहीं होना, एक्सटर्नल रूप से हमें हाईली एक्टिव रहना है, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में अगर हम हैं तो हमें हर चीज कॉन्शियसली करनी पड़ेगी, अनकॉन्शियसली नहीं. कॉन्शियसली करेंगे, जब हम कॉन्शियसली करेंगे तो हो सकता है अनकॉन्शियस करने पे भी हमें फायदा मिल रहा हो, कुछ सुकृतियां मिल रही हो, पर अगर हम कॉन्शियसली करेंगे तो हमें उसका फायदा हजारों और लाखों गुना ज्यादा लग सकता है. तो हमें भी यही चाहिए कि जैसे नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि किस प्रकार प्रेमा भक्ति, प्रेममय सेवा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि हम भी प्रेममय सेवा के द्वारा और भगवान का स्मरण करके अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जगतगुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंद.